नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Knot Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। एडोब फोटोशॉप 7.0 क्लासरूम इन अ बुक एडोब क्रिएटिव टीम द्वारा तैयार किया गया एक आधिकारिक अभ्यास आधारित सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण ग्रंथ है। यह रचनात्मक छवि संपादन के लिए बने फोटोशॉप 7.0 को क्रमबद्ध पाठों के माध्यम से सिखाने के उद्देश्य से लिखा गया था। पुस्तक का स्वर संदर्भ कोष जैसा नहीं बल्कि निर्देशित कार्यशाला जैसा है, जिसमें पाठक उदाहरण फाइलों पर काम करते हुए इंटरफेस, चयन, लेयर, रंग सुधार, टेक्स्ट और आउटपुट की प्रक्रियाएं सीखता है। इसका मूल लक्ष्य केवल आदेशों की सूची याद कराना नहीं बल्कि यह समझाना है कि किसी छवि को सुधार में जोड़ने या प्रकाशित करने के लिए सही औजार और सही क्रम कैसे चुना जाए। यह अपने समय के डेस्कटॉप पब्लिशिंग, वेब ग्राफिक्स और प्रिंट उत्पादन की जरूरतों को भी संबोधित करती है। चूंकि यह संस्करण पुराना है, इसके कई मेनू और सुविधाएं आधुनिक फोटोशॉप से अलग हैं। फिर भी गैर विनाशकारी संपादन, पिक्सल नियंत्रण और कार्यप्रवाह जैसे बुनियादी सिद्धांत आज भी उपयोगी बने हुए हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, पाठ आधारित अभ्यास से फोटोशॉप के कार्यक्षेत्र को समझने की पद्धति। इस पुस्तक की विशिष्टता इसका क्लासरूम मॉडल है। सीखने को अलग अलग आदेशों की वर्णमाला के रूप में पेश करने के बजाय या पाठक को फाइल खोलने, उपकरण चुनने, बदलाव देखने और परिणाम सहेजने जैसे कार्यों की श्रृंखला से गुजारती है। इस पद्धति का व्यावहारिक लाभ यह है कि इंटरफेस के हिस्से जैसे टूलबॉक्स, पैलेट, मेनू और विकल्प पट्टी किसी वास्तविक काम के संदर्भ में समझ आते हैं। शुरुआती उपयोगकर्ता अक्सर यह जान लेते हैं कि कोई उपकरण मौजूद है, पर यह नहीं समझते कि उसे कब और किस सेटिंग के साथ इस्तेमाल करना है। निर्देशित अभ्यास इस अंतर को कम करते हैं। पुस्तक फोटोशॉप को केवल चित्र बनाने के माध्यम के बजाय एक संपादन वातावरण के रूप में स्थापित करती है, जहां फाइल का आकार, दृश्य अनुपात, रंग व्यवस्था और सहेजने का प्रारूप निर्णयों को प्रभावित करते हैं। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से उस दौर में महत्वपूर्ण था जब डिजिटल कैमरा, स्कैनर और प्रिंट प्रकाशन के बीच फाइलों का आदान प्रदान बढ़ रहा था। आज के पाठक के लिए भी इसका प्रमुख सबक यह है कि फोटो संपादन में गति औजारों की संख्या से नहीं, सुव्यवस्थित कार्यक्षेत्र और दोहराए जा सकने वाले कार्यक्रम से आती है। दूसरा, चयन और मास्किंग के जरिए छवि के हिस्सों पर नियंत्रित संपादन। फोटोशॉप का केंद्रीय विचार ये है कि पूरी तस्वीर को एक साथ बदलना हमेशा उचित नहीं होता। पुस्तक चयन बनाने की तकनीकों को इसी नियंत्रित संपादन की नींव के रूप में रखती है। आयताकार या गोलाकार चयन, रंग अथवा समान टोन पर आधारित चयन और हाथ से सीमा बनाने वाले औजार अलग प्रकार की वस्तुओं तथा किनारों के लिए उपयोगी होते हैं। चयन का महत्व केवल किसी भाग को काटकर अलग करने में नहीं है, वही सीमा रंग सुधार, फिल्टर, कॉपी, रूपांतरण और स्थानीय रीचिंग को बाकी छवि से अलग रखती है। पुस्तक की प्रशिक्षण शैली पाठक को किनारों की गुणवत्ता, चयन जोड़ने या घटाने और जरूरत पड़ने पर सीमा को नरम करने जैसे निर्णयों का अभ्यास कराती है। मास्किंग का सिद्धांत इसे और सुरक्षित बनाता है, क्योंकि मास्क दृश्यता को नियंत्रित करता है और मूल पिक्सल को तत्काल मिटाने की जरूरत घटाता है। बाल, धुआं या अनियमित किनारों जैसी जटिल स्थितियों में पूर्ण स्वचालन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, विशेषकर इस पुराने संस्करण में। फिर भी पुस्तक का व्यापक पाठ स्पष्ट है। सटीक चयन एक अच्छा कंपोजिट, विश्वसनीय रीचा और साफ पेशेवर परिणाम बनाने की पूर्व शर्त है। तीसरा, लेयर मिश्रण और कंपोजिटिंग से संपादन को लचीला बनाना। पुस्तक फोटोशॉप की लेयर व्यवस्था को जटिल दृश्य निर्माण और सुरक्षित संपादन का आधार बताती है। लेयरों के माध्यम से फोटो, टेक्स्ट, रंग भराव और प्रभावों को अलग रखा जा सकता है। इससे किसी एक तत्व को खिसकाना, उसका आकार बदलना या हटाना संभव होता है बिना पूरे दस्तावेज को फिर से बनाने के। कंपोजिटिंग में यही विभाजन निर्णायक है, क्योंकि कई स्रोतों से आए तत्वों को एक ही दृश्य में विश्वसनीय ढंग से मिलाना पड़ता है। पुस्तक में इस प्रकार के काम के लिए स्थान, अनुपात, किनारे, टोन और छाया के मेल की आवश्यकता पर बल देने वाली प्रक्रियाएं शामिल होने की अपेक्षा उचित है, क्योंकि ये फोटोशॉप प्रशिक्षण के स्थापित आधार है। मिश्रण मोड और अपारदर्शिता जैसे नियंत्रण यह तय करते हैं कि ऊपर की लेयर नीचे मौजूद पिक्सलों के साथ कैसे दिखाई दे। इनका उपयोग केवल सजावटी प्रभाव के लिए नहीं बल्कि प्रकाश, बनावट और रंग के संबंध को समायोजित करने के लिए भी होता है। लेयरों का व्यावहारिक लाभ संशोधन क्षमता है। अंतिम परिणाम को जल्दी समतल कर देने पर बाद की सुधार संभावनाएं कम हो जाती है। इसलिए यह पुस्तक पाठक को दृश्य को एक स्थायी तस्वीर नहीं बल्कि संपादन योग्य घटकों वाली संरचना के रूप में देखना सिखाती है। चौथा, रंग और टोन सुधार में हिस्टोग्राम, समायोजन और प्रिंट की तैयारी। छवि संपादन का एक महत्वपूर्ण भाग विषय बदलना नहीं बल्कि पहले से मौजूद फोटो को अधिक संतुलित और उपयोग योग्य बनाना है। यह पुस्तक रंग तथा टोन सुधार की ऐसी कार्यप्रणाली से परिचित कराती है जिसमें उजले भाग, गहरे भाग, मध्य टोन और रंग संतुलन को अलग अलग देखा जाता है। हिस्टोग्राम जैसे दृश्य संकेत यह समझने में मदद करते हैं कि छवि में टोनल जानकारी किस तरह फैली हुई है और कहां विवरण खोने का जोखिम है। स्तर तथा वक्र आधारित समायोजन का सिद्धांत यही है कि विरोधाभास बढ़ाते समय छाया और हाईलाइट में मौजूद उपयोगी विवरण अनावश्यक रूप से नष्ट न हो। रंग सुधार में सफेद संतुलन, रंग झुकाव और माध्यम की जरूरत भी मायने रखती है। स्क्रीन पर आकर्षक दिखने वाला रंग प्रिंट में वैसा ही आए यह जरूरी नहीं, क्योंकि मॉनिटर प्रकाश उत्सर्जित करता है जबकि मुद्रण स्याही और कागज पर निर्भर है। पुस्तक के समय की रंग प्रबंधन क्षमताएं आज से सीमित थीं, फिर भी RGB स्क्रीन रंगों और CMYK के प्रिंट रंगों के बीच अंतर समझना उपयोगी आधार है। इसका व्यावहारिक संदेश है कि सुधार को आंख के अनुमान तक सीमित न रखें, छवि के टोनल डेटा, अंतिम माध्यम और अपेक्षित आउटपुट को साथ में जांचें। अंत में टेक्स्ट, वेब ग्राफिक्स और फाइल प्रारूपों के लिए उद्देश्य आधारित आउटपुट फोटोशॉप 7.0 का उपयोग केवल फोटो लैब की तरह नहीं होता था। इसे वेब बटन, बैनर, शीर्षक, स्कैन की हुई सामग्री और प्रिंट लेआउट के लिए ग्राफिक्स तैयार करने में भी प्रयोग किया जाता था। पुस्तक का प्रशिक्षण ढांचा, इसलिए टेक्स्ट जोड़ने, टाइप की दृश्य व्यवस्था बनाने और चित्र को उसके अंतिम उपयोग के अनुकूल सहेजने की जरूरत पर केंद्रित है। टेक्स्ट को अलग लेयर पर रखना उपयोगी है क्योंकि शब्द, फॉन्ट, आकार और स्थान बाद में बदले जा सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट और फोटो को एक दृश्य में जोड़ते समय पठनीयता, रंग विरोधाभास और खाली स्थान भी उतने ही आवश्यक है। आउटपुट के स्तर पर फाइल प्रारूप का चुनाव गुणवत्ता, पारदर्शिता, संपादन क्षमता और फाइल आकार के बीच संतुलन है। वेब के लिए छोटी फाइल और शीघ्र लोडिंग महत्वपूर्ण हो सकती है, जबकि प्रिंट के लिए पर्याप्त रिजोल्यूशन तथा उचित रंग व्यवस्था प्राथमिक होती है। पुस्तक जिस इंटरनेट युग के लिए लिखी गई थी उसके प्रारूप और निर्यात विकल्प आज बदल चुके हैं, फिर भी इसका निर्णय सिद्धांत प्रासंगिक है। किसी छवि को एक ही मास्टर फाइल मांगकर हर जगह भेजना उचित नहीं। माध्यम, दर्शक और वितरण की सीमा के अनुसार अलग प्रतियां तैयार करना पेशेवर कार्य प्रवाह का आवश्यक हिस्सा है। निष्कर्ष में Adobe Photoshop 7.0 Classroom in a Book उन शुरुआती और मध्यवर्ती उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे उपयुक्त है जो पुराने फोटोशॉप संस्करण के साथ काम कर रहे हैं, पुराने डिजिटल डिजाइन कार्यों को समझना चाहते हैं या छवि संपादन की बुनियादी कार्यप्रणाली को व्यवस्थित ढंग से सीखना चाहते हैं। ग्राफिक डिजाइन, प्रकाशन, वेब ग्राफिक्स और फोटो रीचिंग के विद्यार्थी भी इसके अभ्यास केंद्रित संरचना से लाभ ले सकते हैं। इसका मुख्य व्यावहारिक लाभ यह है कि यह चयन, लेयर, रंग सुधार और आउटपुट जैसे विषयों को अलग अलग कौशल नहीं मानती, बल्कि एक ही उत्पादन प्रक्रिया के परस्पर जुड़े चरणों के रूप में रखती है। अन्य सामान्य फोटोशॉप पुस्तकों की तुलना में इसका अंतर आधिकारिक प्रशिक्षण श्रृंखला का ढांचा है। यह पाठक को उपकरणों के पीछे मौजूद कार्यप्रवाह अपनाने के लिए कहती है, पहले फाइल और लक्ष्य समझना, फिर नियंत्रित बदलाव करना और अंत में माध्यम के अनुसार निर्यात करना। आधुनिक फोटोशॉप सीखने वाले व्यक्ति को इसे वर्तमान सुविधाओं का अद्यतन मार्गदर्शक नहीं समझना चाहिए। इसमें आज के जनरेटिव AI, आधुनिक कैमरा रॉ, क्लाउड सहयोग या नए चयन औजारों की अपेक्षा करना उचित नहीं होगा। फिर भी इसकी सीमाएं ही एक ऐतिहासिक लाभ भी देती है। अपेक्षाकृत सरल इंटरफेस में काम करने से पिक्सेल रिजोल्यूशन, लेयर क्लम और रंग मॉडल के मूल संबंध अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए यह पुस्तक पुराने सॉफ्टवेयर का मैनुअल भर नहीं, डिजिटल इमेजिंग के स्थायी अनुशासन का उपयोगी प्रशिक्षण दस्तावेज है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं Adobe क्रिएटिव टीम, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।